स्वागत है आपका दिनभर में। आज है 1 जून, दिन बुधवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग का हुआ उद्घाटन। स्विस प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। पाकिस्तान में शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर एक महिला टीचर को कुछ लोगों ने जिंदा जलाया। अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में 2002 में हुए दंगे पर कल आएगा अदालत का फैसला। पीड़ितों को बेसब्री से है इंतजार। और दुनिया जहान में आज होगी चर्चा अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की हिरोशिमा यात्रा की।
एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम निरस्त्रीकरण चाहते हैं दुनिया में, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। साथ साथ में ओबामा ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और एक्सपैंड किया है।
होंगी और भी खबरें, लेकिन पहले बीबीसी समाचार विस्तार से।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वतों के नीचे से दुनिया की सबसे लंबी और गहरी सुरंग का उद्घाटन किया गया है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला और इटली के प्रधानमंत्री मैथ्यो रेंजी समेत वरिष्ठ यूरोपीय नेताओं ने इस मौके पर गोटहार्ड सुरंग के नीचे से गुजरने वाली ट्रेन की सवारी की है। 17 साल में $12 अरब के खर्च पर बनी ये सुरंग ज्यूरिख, बर्लिन और मिलान जैसे शहरों के बीच के सफर को काफी छोटा कर देगी। 57 किलोमीटर लंबी सुरंग को दिसंबर में पूरी तरह खोल दिया जाएगा। सीरिया के दराया शहर में 2012 नवंबर के बाद पहली बार मानवीय सहायता पहुंचाई गई है। मानवीय सहायता संस्था रेड क्रॉस ने यह जानकारी दी है। अप्रैल में संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने कहा था कि दराया में खाने, साफ पानी और दवाओं की जबरदस्त कमी हो गई है। दमिश्क के दक्षिण में स्थित इस शहर में 48 घंटे के लिए युद्ध विराम आज सुबह से लागू कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय सहायता विभाग ने कहा है कि वैक्सीन, बच्चों के दूध, दवाई और स्वास्थ्यवर्धक खाने का सामान शहर में पहुंचाया जा रहा है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने कहा है कि ब्रिटेन अगर यूरोपीय संघ से बाहर होता है तो इससे न सिर्फ ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को बल्कि दुनिया के और देशों को भी नुकसान होगा। OECD के अर्थशास्त्र विभाग के अल्वेरो परेरा ने BBC से कहा कि विश्व में आर्थिक हालात इतने मजबूत नहीं हैं कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने को झेल सकें।
We have both the advanced economies and the emerging market economies.
विकसित और बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं सब धीमी पड़ रही हैं। बड़े झटकों से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर काफी असर होगा। हम मानते हैं कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन का बाहर होना भी एक बड़ा झटका होगा, जैसे कि चीन का नीचे आना। इसका असर न सिर्फ ब्रिटेन पर होगा बल्कि अन्य यूरोपीय देशों और दूसरे देशों पर भी इसका असर होगा। ये थे अल्वेरा परेरा के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। इस्लाम में 3 तलाक की प्रथा को बंद करने के लिए एक अपील पर भारत के कई इलाकों से 50,000 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों ने दस्तखत किए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग को सौंपी गई इस अपील में 3 तलाक की प्रथा को नृशंस, भेदभावपूर्ण और गैर इस्लामिक कहा गया है और आयोग से इसे बंद करने के लिए मदद करने की अपील की गई है। इस मुहिम की अगुवाई भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन नाम की संस्था कर रही है। इनका कहना है कि 3 तलाक का चलन बढ़ता जा रहा है और पुरुष अब तलाक देने के लिए टेक्स्ट मैसेज और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और ना ही तलाक देने से पहले वो बच्चों की परवाह करते हैं। BBC समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। दुनिया की सबसे लंबी और गहरी रेलवे सुरंग का आज उद्घाटन हो गया। स्विट्जरलैंड में बनी 57 किलोमीटर लंबी सुरंग को बनाने में लगभग 2 दशक का वक्त लगा। इसके बनने से उत्तरी और दक्षिणी यूरोप के बीच का सफर एल्प्स पहाड़ों के भीतर से तेज रफ्तार रेल मार्ग से संभव हो सकेगा। स्विट्जरलैंड के प्रधानमंत्री का कहना है कि इससे यूरोप में सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। अब तक सामान लाने ले जाने के लिए लाखों ट्रकों का इस्तेमाल किया जाता था। कैसे अंजाम दिया गया इस मुश्किल काम को बता रही हैं तृप्ति श्रीवास्तव।
रेल के सायरन के साथ स्विट्जरलैंड में एल्प्स के पहाड़ों के बीच आज दुनिया की सबसे लंबी और गहरी रेल सुरंग का उद्घाटन हुआ। रंगारंग समारोह के बीच 57 किलोमीटर लंबी इस रेल सुरंग से गुजरने के लिए दोनों तरफ से दो ट्रेनें रफ्तार पकड़ने को तैयार दिखीं। दुनिया की सबसे लंबी और गहरी सुरंग को बनाने में 17 साल का समय लगा। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति योहान श्नाइडर अमान ने सुरंग से गुजरने वाली पहली ट्रेन के लिए ऐलान किया और पल को ऐतिहासिक बना दिया। योहान श्नाइडर अमान ने कहा,
Durch den längsten Tunnel der Welt fahren wünsche ich eine gute,
दुनिया की सबसे लंबी सुरंग से सफर कर रहा हूँ। मैं एक अच्छी, सुरक्षित और वक्त के पाबंद सफर की शुभकामनाएं देता हूँ।
इस तेज रफ्तार रेल सुरंग के जरिए यातायात के समय में कमी आएगी। इस सुरंग में रेल करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। इसे बनाने में 12 बिलियन डॉलर का खर्च आया। 2600 लोगों ने दिन रात काम कर सुरंग को तैयार किया। गोठाट सुरंग में रेल 250 किलोमीटर तक पहाड़ों के अंदर और गहराई तक जाती है। ये रेल मार्ग उत्तरी और दक्षिणी यूरोप को जोड़ता है। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति योहान श्नाइडर अमान ने इस योजना को एक बहुत बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा,
आज हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। गोठाट बेस सुरंग बनाकर हमने एक चमत्कार कर दिखाया है। ये एक ऐसा काम था जिसकी योजना से लेकर निर्माण तक कई पीढ़ियां शामिल रहीं। ये मुझे और आपको विनम्रता के साथ गर्व से भर देता है। इस योजना को लागू करना कोई छोटी बात नहीं है।
इस योजना की रूपरेखा 40 के दशक में सबसे पहले बनाई गई थी। 1992 में स्विस वोटरों के तेज रफ्तार रेल की मांग करने के साथ इसका काम शुरू हुआ। आधुनिक तकनीक से बनाई गई इस सुरंग में पहाड़ों के पत्थरों को काटना एक चुनौती थी। 73 तरह के पत्थरों को काटकर सुरंग बनाई गई। इन पत्थरों को ड्रिलिंग मशीन से 400 मीटर तक काटा गया, जो एक बेहद मुश्किल काम था। इस नए मार्ग का उद्देश्य रेल भाड़े को कम करना है। सुरंग के संचालक निदेशक लॉरेंजो हंट का कहना है कि ये एक बेहद जटिल योजना थी जिसे समय पर बजट के अंदर पूरा कर लिया गया। लॉरेंजो हंट ने कहा,
इस इलाके में कठिनाइयां बहुत थी। इसके बीच में बड़ा पहाड़ था। इसके अलावा भाषा की भी कठिनाई थी। ये इलाका दो राज्यों के बीच में है, जहाँ दो अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं और साथ ही अलग अलग तरह के सहयोगियों को साथ लेकर चलना भी एक बड़ी कठिनाई थी।
इस रेल मार्ग से ज्यादा भारी सामान ले जाया जा सकेगा, जिससे सड़क परिवहन पर दबाव कम हो जाएगा, ट्रैफिक बेहतर होगा और प्रदूषण कम होगा। इसकी पहली यात्रा के समय जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांक्वा ओलांद और इटली के प्रधानमंत्री माटेओ रेंजी की मौजूदगी खास रही। दिसंबर तक जब सुरंग पूरी तरह से सेवा के लिए उपलब्ध हो जाएगी, तो ज्यूरिख से उत्तरी इटली के मिलान तक का सफर 2 घंटे 40 मिनट का हो जाएगा, जिससे लगभग 1 घंटे का समय बच सकेगा।
ब्यौरा सुना रही थी तृप्ति श्रीवास्तव। पाकिस्तान में शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर एक महिला टीचर को जलाने का मामला सामने आया है। बुरी तरह से जल चुकी मारिया ने आज इस्लामाबाद के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस घटना की पूरी जानकारी के लिए हमारी सहयोगी वंदना ने बात की बीबीसी उर्दू सेवा के संवाददाता हारून रशीद से।
देखें, ये इस्लामाबाद से कोई 50 किलोमीटर दूर मरी का इलाका है। वहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल में एक टीचर थी, 19 साल लड़की। उस पर जो स्कूल का प्रिंसिपल है शौकत नामी, उसने अपने बेटे के लिए कोई रिश्ता भेजा था कोई 6 माह पहले। हालांकि उसका बेटा जो है वो शादीशुदा है और बताया जाता है कि उसका एक बच्चा भी था। तो लड़की ने जो 19 साल है उसने इनकार कर दिया उससे, जिसके बाद ये कोई परसों रात गए जो शौकत हैं प्रिंसिपल, वो कुछ लोगों के साथ इनके घर रात के वक्त में दाखिल हुए और ज़बरदस्ती उसको मारना पीटना शुरू कर दिया लड़की को। फिर उस पर तेल छिड़क कर उन्होंने उसे आग लगा दी। तो वालदैन का यही कहना है कि ये शादी से इनकार की वजह से उस पर ये तशद्दुद किया गया है और उसको जख्मी हालत में फिर यहाँ इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन 80% उसका जो जिस्म था वो जल चुका था, लिहाजा आज सुबह वो जो है हलाक हो गई। इस जलाई जाने वाली लड़की के वालिद ने भी बीबीसी के साथ बात की है और जो वाकया था उसकी तफसील कुछ यूं बताई है हमें।
बच्ची ने जो बयान दिए उसी के ऊपर अमल करें, हमारे हुक्मरान भी करें और जो आदमी हमारे इंतजामिया वो भी करें।
तो आपने रिश्ते से मना किया था उम्र की वजह से?
रिश्ते का पहले मंगा था, अगर हमने कहा था چھ ماہ پہلے کی بات ہے، ہم نے کہا تھا کہ وہ بچہ شادی شدہ ہے، یہ مسئلہ ہوا تھا۔
تو یہ شوکت صاحب نے اپنے لیے یا اپنے بیٹے کے لیے مانگا؟
بیٹے کے لیے مانگ رہے تھے۔
اور بیٹا بھی شامل تھا یہ جن لوگوں نے یہ ذاتی؟
نہیں، بیٹا اس بات پر نہیں تھا، بیٹا اور باپ کی آپس میں کلیش چل رہی تھی، بیٹا باپ کی باتیں نہیں مان رہا تھا، تو باپ ان باتوں پر تنگ آ کر میرے بیٹے کو آگ لگا دی۔
جی، یہ شاید اس طرح کا پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کی جو گھٹنائیں واقعہ پہلے بھی سنی ہیں، پاکستان میں بھی ہوتی رہی ہیں، تو قانون کیا کہتا ہے اسے لے کر؟
قانون تو اس کی سختی سے ممانعت کرتا ہے اور اس کو ڈسکریج کرتا ہے، لیکن پاکستان جیسے کنزرویٹو معاشرے میں جہاں میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، وہاں اس طرح کے واقعات اکثر سامنے آتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو، تقریباً ایک ماہ پہلے ایبٹ آباد میں بھی ایک لڑکی کو جو علاقے کا جرگا تھا اس نے تشدد کی اور پھر اسے زندہ جلا دیا گیا تھا۔ تو اس طرح کے واقعات، شاید یہ میڈیا زیادہ پھیل گیا ہے، اس کی وجہ سے میڈیا میں زیادہ آ رہے ہیں اور میڈیا اس کو نوٹ کر رہا ہے، تو کوششیں تو ہو رہی ہیں اس کو ڈسکریج کرنے کی، لیکن جب تک کہتے ہیں کہ معاشرہ مہذب نہیں ہوگا، یہاں پر تعلیم کا پرچار نہیں ہوگا اور جو حقوق کے انسانی ہیں کہ ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں اور برداشت کا مادہ نہیں پیدا کیا جائے گا، یہاں پر ماہرین یہی کہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات جاری رہیں گے۔
یہ تھے بی بی سی اردو سیوا کے سنواداتا ہارون رشید۔
خبر سچ ہے اگر بی بی سی پر ہے۔
اور اب بھارت کا رخ کرتے ہیں۔ اتر پردیش کے دادری علاقے میں پچھلے سال کتھت گومانس کو لے کر ہوئی محمد اخلاق کی ہتیا کے معاملے میں نئے موڑ آ رہے ہیں۔ منگلوار کو متھرا کی ایک لیب نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ وہاں پایا گیا میٹ گومانس تھا، جبکہ پہلے کی ایک رپورٹ میں اسے بکرے کا مانس بتایا گیا تھا۔ آج پولیس نے کہا ہے کہ جس سیمپل رپورٹ کی میڈیا میں چرچا ہو رہی ہے وہ اخلاق کے گھر سے نہیں ملا تھا۔ ایک رپورٹ کے ساتھ ونیت کھرے۔
نوئیڈا کے ورشٹھ پولیس ادھیکشک کرن ایس نے بی بی سی کو بتایا کہ متھرا لیب کی جس نئی رپورٹ کی بات کی جا رہی ہے، اس رپورٹ میں جانچ کا سیمپل میٹ اخلاق کے گھر کے پاس ایک ٹرانسفارمر کے نزدیک ملا تھا۔ انہوں نے کہا محمد اخلاق کا شو بھی وہیں پایا گیا تھا۔ کرن ایس نے صاف کیا کہ سیمپل کے گومانس ہونے سے جانچ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ ہتیا کا معاملہ ہے۔ منگلوار کو آئی ایک رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ محمد اخلاق کے معاملے میں جس مانس کے سیمپل کو ایک لیب کے پاس بھیجا گیا، اس لیب نے اس مانس کے سیمپل کو گومانس بتایا ہے۔ اس سے پہلے ایک انیہ لیب نے فورینسک جانچ میں اخلاق کے فریج میں ملے مانس کو بکرے کا مانس بتایا تھا۔ یہ دوسری تازہ رپورٹ متھرا کی ایک لیب نے دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مانس کا سیمپل گائے یا بچھڑے کا ہے۔ اتر پردیش کے پولیس مہا نردیشک جاوید احمد نے ایک ٹی وی چینل کو بتایا تھا، شروعات میں ہمیں کہا گیا تھا کہ یہ بکرے کا مانس تھا، لیکن بعد میں اس لیب نے ہمیں بتایا کہ یہ گائے کا مانس تھا۔ اس معاملے پر محمد اخلاق کے چھوٹے بھائی جان محمد سیفی نے بی بی سی کو بتایا۔
پولیس کا کہنا بھی ہے، ایس ایس پی صاحب نے بھی یہ بولا ہے، اور پولیس جو موقع پہ پہنچی ہوگی، ہم میں تو کوئی بھائی وہاں تھا نہیں۔ تو یہ پولیس نے جو میٹ کلیکٹ کیا وہ روڈ سے کلیکٹ کیا، اخلاق کو مار کے روڈ پہ لا کے ڈالا گیا، گھر سے قریب 100-150 میٹر کی دوری پہ۔
تو یہ میٹ کہاں سے آیا ہوگا
سر؟ یہ ہم نہیں کہہ سکتے سر۔ جو آدمی اتنی بڑی سازش کرے گا، یعنی کہ دیکھیے، مائنورٹی آیوگ نے بھی اپنی رپورٹ میں کہا کہ پری پلانٹ مرڈر تھا۔ جو الپ سنکھیک آیوگ کی رپورٹ ہے، آپ اسے دیکھ لیں، اس میں بڑے صاحب لکھا پری پلانٹ مرڈر۔ جو آدمی اس طرح کی سازش کرے گا، اناؤنسمنٹ کرائے گا، پھر پبلک اکٹھی کرے گا، پھر روڈ پہ پبلک کو اکٹھے کریں گے، اس کے بعد اخلاق کے گھر پہ اٹیک کریں گے، تو وہ ایسا بھی کوئی اپنی سازش کو کامیاب کرنے کے لیے کوئی اس کا ایویڈینس بھی لا کے کہیں سے ڈالیں گے وہاں روڈ پہ۔
محمد اخلاق کے گھر پر بیتے سال 28 ستمبر کو بھیڑ نے حملہ کر دیا تھا۔ بھیڑ کے حملے میں اخلاق کی موت ہو گئی تھی، جبکہ ان کا ایک بیٹا گھائل ہو گیا تھا۔ آروپ ہے کہ گاؤں کے ہی ایک مندر کے لاؤڈ اسپیکر سے اخلاق کے گھر میں بیف پائے جانے کی گھوشنا کی گئی تھی۔ اس معاملے میں پولیس نے ایک نابالغ سمیت 15 لوگوں کے خلاف چارج شیٹ داخل کی تھی۔ گھٹنا کے بعد اخلاق کے پریوار نے کہا تھا کہ ان کے گھر میں گائے کا مانس نہیں تھا۔ ونیت کھرے، بی بی سی، دلی۔
2002 کے گجرات دنگوں کے 9 ایسے مقدمے ہیں جن کی جانچ سپریم کورٹ کی نگرانی میں کرائی گئی ہے۔ ان میں سے ایک معاملہ احمد آباد کی گلبرگ سوسائٹی کا ہے۔ گلبرگ سوسائٹی میں ایک بھیڑ نے 69 مسلم ناگرکوں کا قتل کر دیا تھا، جن میں کانگریس کے پورو سانسد احسان جعفری بھی شامل تھے۔ کل اس کیس پر عدالت کا فیصلہ آنے والا ہے۔ سنیے زبیر احمد کی رپورٹ۔
اٹھائیس فروری 2002 गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में 59 कार सेवकों को जिंदा जलाए जाने के बाद गुजरात हिंसा की लपेट में था। अहमदाबाद की गुलबर्ग सोसाइटी में कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद एहसान जाफरी के 2 मंजिला घर में सोसाइटी के अधिकतर लोग सहमे डरे पनाह लिए हुए थे। बाहर हजारों की संख्या में उत्तेजित भीड़ अंदर घुसना चाह रही थी। कुछ घंटों के बाद सैकड़ों लोग अंदर आ गए और घर को आग लगा दी। पुलिस जब तक अंदर आई, एहसान जाफरी समेत 68 निवासियों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। एहसान जाफरी का घर आग में लिपटा हुआ था। वहां फिरोज मोहम्मद, गुलजार मोहम्मद पठान और उनका परिवार भी मौजूद था।
एहसान जाफरी के घर के आगे ही हमारी मम्मी को मारा था।
तो वहां एहसान जाफरी के घर में पनाह नहीं लिया था आप लोगों ने?
वहीं थे सब, औरतें बच्चे सब वहीं थे। जो हमारा घर जो कोने का है, तो वहाँ से दीवार तोड़ के जैसे कि अंदर वो लोग घुसे थे, तो हम एकदम भागे थे, तो मुझे मारा, फिर मेरे को लगी, तो फिर मैं एकदम पड़ोस के बंगले में ऊपर चढ़ गया, तो ऊपर से देखा तो हमारी मम्मी ऐसा आपके घर की तरफ जा रही थी, तो वहीं पे उनको गिरा दिया।
पठान के परिवार के अन्य सदस्य भी मारे गए थे।
हम गुलबर्ग सोसाइटी में 15 नंबर के मकान में रहते थे।
अच्छा।
हमारे फैमिली में हम 7 लोग थे, जिसमें से 5 लोग शहीद हो गए।
अच्छा।
हमारी मम्मी, हमारा अब्बा, हमारी बहन और 2 भाई। मैं भी वहीं पर था, मेरे को भी मारा था काफी, हाथ में, सिर में तलवारों से मारा था।
गुलबर्ग सोसाइटी अब सुनसान पड़ा है। सईद खान के परिवार के 10 सदस्यों की हत्या की गई थी। कुछ साल पहले सईद खान मुझे एहसान जाफरी के घर लेकर गए थे। उन्होंने उस समय मुझसे ये उम्मीद जताई थी कि उन्हें इंसाफ मिलेगा।
हमको तो लगता है इंसाफ मिलेगा और हम इंसाफ के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे, और अगर नहीं भी मिला तो हमको अल्लाह ताला पे, खुदा पे भरोसा है कि वो हमको इंसाफ दिलाएगा।
इंसाफ की वो घड़ी अब आ गई है। सईद खान और पठान जैसे 69 पीड़ितों को जिस दिन का इंतजार था, वो दिन आ गया। गुजरात की एक विशेष अदालत अपना फैसला गुरुवार को सुनाने जा रही है। पीड़ितों के वकील SM वोरा को आशा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा।
बात ये है कि ये जो लोग कहते हैं कि मूव ऑन हो जाओ, आगे बढ़ जाओ, मगर ये एक एक फैमिली के तुमने 10-10, 11-11, 14-14 आदमियों को मार डाले हैं इनकी नजरों के सामने। इनकी नजरों के सामने माँ को काट डाला, बाप को काट डाला, भाई बहन को काट डाला, तो ऐसे लोग ये तो चाहेंगे कि कम से कम उन लोगों को सजा हो। उन्होंने देखा है कि ये आदमी ने इसको मारा है और उन लोगों ने जाके कोर्ट में जाके कहा है, और आज 14 साल के बावजूद भी, इतने साल जाने के बाद भी वो विक्टिम्स वहां के वहां वो कसे मस नहीं हो रहे और पूरा बिल्कुल डट के डिपोजिशन दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि उनको सिर्फ न्याय चाहिए।
गुलबर्ग हत्याकांड का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चलने वाले गुजरात के 9 बड़े मुकदमों में से एक है। मुकदमे की कार्रवाई 14 साल तक चली, जिसके दौरान 4 जज बदले गए, 4 अपराधियों की मौत हो गई और 338 गवाहों की गवाही ली गई। फिरोज मोहम्मद, गुलजार मोहम्मद पठान कहते हैं कि 14 साल तक के इंतजार उन्हें मंजूर था।
हमको उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा, हमको पूरी उम्मीद है, और जो जिन लोगों ने किया है उनको सजाएं मिलेंगी, और तो क्या, जिसने हमारे घर वालों को मारा है उनको फांसी होनी चाहिए।
SM वोरा कहते हैं कि ये फैसला गुजरात के पीड़ितों को आगे बढ़ने में, अपना जीवन सामान्य करने में मददगार साबित हो सकता है। जुबैर अहमद, BBC दिल्ली।
अपने कार्यकाल के आखिरी महीनों में अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा हर तरफ दोस्ती और सद्भाव के पैगाम भेजने में जुटे हैं। पुराने दुश्मनों से मिलते मिलाते ओबामा हिरोशिमा भी जा पहुंचे, जो जापान पर अमरीकी कहर के साथ ही दुनिया पर हमेशा मंडराते एक खतरे की भी याद दिलाता है। इतिहास तब बना था जब अमरीका ने हिरोशिमा पर बम गिराया था। लेकिन लंबा भावुक भाषण या पीड़ितों को गले लगा लेने भर से क्या ओबामा का हिरोशिमा जाना भी इतिहास बनेगा? दुनिया जहान में निखिल रंजन ने यही जानने की कोशिश की है।
दुनिया जहान। साल 1970 में 7 दिसंबर की वो एक सर्द दोपहर थी। वॉर्सा में यहूदियों की बस्ती में होलोकॉस्ट की मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देने गए विली ब्रांट यकायक घुटनों के बल बैठ गए। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन पश्चिम जर्मनी के चांसलर की इस मुद्रा ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। यहूदियों पर नाजी शासन के दौरान हुए अत्याचारों की माफी मांगने के इस तरीके की दुनिया में और कोई मिसाल नहीं। जर्मनी में वरिष्ठ पत्रकार राम यादव।
वो एक सचमुच ही बहुत अपने ढंग का क्रांतिकारी क्षण था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके ही युद्ध का बिगुल बजाया था 1 सितंबर 1939 को, और वहाँ जर्मनी का कब्जा हो गया बहुत धड़ल्ले के साथ, और वारसा जो उसकी राजधानी है उसकी जो यहूदी बस्ती थी वहाँ पर यहूदियों को ठूस ठूस कर भर दिया गया, उनके साथ बहुत अत्याचार हुए, बहुत सारे लोग मरे। तो विली ब्रांट वारसा गए थे वहाँ की सरकार के साथ एक सीमा संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कि पोलैंड की जर्मनी के विभाजन के बाद और पराजय के बाद जो नई सीमा है उसको उस समय का पश्चिम जर्मनी स्वीकार करता है। तो उस हस्ताक्षर से पहले वो वहाँ की यहूदी बस्ती के उस शहीद स्मारक को देखने और वहाँ पर श्रद्धांजलि देने गए, और बाद में उन्होंने अपनी एक किताब लिखी तो उसमें उनका कहना है कि लोगों ने मुझसे अक्सर पूछा कि क्या ये सोची समझी बात थी, ऐसा नहीं था। उनका कहना है कि किसी को पता नहीं था, सभी एकदम भौचक्के रह गए।
पिछले हफ्ते अमरीकी राष्ट्रपति हिरोशिमा गए तो दुनिया की नजरों को शायद ऐसी ही किसी तस्वीर का इंतजार था। बराक ओबामा पहले ही साफ कर चुके थे कि वो माफी नहीं मांगेंगे।
71 years ago, on a bright, cloudless morning, death fell from the sky and the world was changed.
लेकिन बारीकी से चुने शब्दों वाले जज्बाती भाषण में ओबामा ने एक बेहतर दुनिया का वो ख्वाब दिखाया कि बहुतों की आंखें चुंधिया गईं। कुछ आंखों में आंसू भी उमड़े, लेकिन इन बातों में ओबामा ने खुद को और अमेरिका को जिस सोच का झंडा बरदार बताया उस पर यकीन करना बहुतों के लिए मुश्किल हो रहा है। वरिष्ठ पत्रकार और लंबे समय से परमाणु हथियारों की मुखालफत करते आए अचिन विनायक,
एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम निरस्तीकरण चाहते हैं दुनिया में, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। साथ साथ में ओबामा ने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को और एक्सपैंड किया है और डेवलप कर रहा है, और ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ये मतलब है कि जो आउटर स्पेस जो है उसको वो न्यूट्रलाइज और मिलिटराइज कर रहा है, और ये बहुत ही खतरनाक है। अमेरिका का सरकार बोलता है कि नहीं नहीं वो तो ईरान के लिए है ये वो वगैरह, मगर चीन का सरकार और रूस का सरकार और जो भी समझते हैं ये न्यूक्लियर वेपन सिस्टम का जो सब जानते हैं कि उसी के लिए है, और इसका मतलब क्या है कि चीन और रूस और अपना वेपन सिस्टम को मजबूत करेंगे और बनाएंगे वॉरहेड, और उससे क्या होगा कि इसका असर इंडिया के ऊपर भी हो जाएगा, और फिर क्योंकि इंडिया कर रहा है तो पाकिस्तान कर रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि एक तरफ प्रेसिडेंट ओबामा अपना दिखावा के लिए कह रहा है कि हमको ये हम ये चाहते हैं, देखो मैं हिरोशिमा आ रहा हूँ, मगर माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है, और साथ साथ में जो वो प्रैक्टिस कर रहा है वो बिल्कुल उल्टा है।
ओबामा ने अपने पूर्ववर्ती जॉर्ज बुश के उलट नीतियों को बदलने की बात पहले दिन से की थी। अफगानिस्तान से विदेशी फौज की वापसी का वादा भी उन्होंने पूरा किया और ग्वांतानामो की जेल भी बंद हुई, लेकिन दक्षिण चीन सागर, सीरिया, पाक अफगान सीमा समेत कई ऐसे मोर्चे अब भी खुले हैं जहां खून बह रहा है। दुनिया में शांति की बात करने वाले राष्ट्रपति ने हाल ही में 1,000 अरब डॉलर अमरीका के परमाणु हथियारों के जखीरे को आधुनिक बनाने के लिए दिए हैं। उनके पूरे कार्यकाल में भी हथियारों को कम करने की दिशा में कोई बड़ी पहल नजर नहीं आती।
ये सब नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, और नेशनल इंटरेस्ट क्या है उनका कि भाई अमेरिका को मजबूत रहना है। वो अपने आप को कन्विंस करते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर अमेरिका इज गुड फॉर द वर्ल्ड, एंड अमेरिका मस्ट रिमेन स्ट्रॉन्ग, अमेरिका मस्ट बी द वर्ल्ड पुलिसमैन। अगर आप इस बात को सिंसियरली बिलीव करते हैं कि आप वर्ल्ड पुलिसमैन हैं और आपको रहना चाहिए, तो फिर आपको कन्विंस कर सकते हैं कि देखो पुलिसमैन को भी कभी कभी गंदी बातें करना पड़ता है, इनको मारने की जरूरत पड़ेगा क्योंकि वो बुरे हैं, ये खराब है, ये वो है।
अमेरिका के पहले काले राष्ट्रपति बराक ओबामा के कदमों पर इतिहास की लकीरें खिंचती रही हैं। राष्ट्रपति बनकर काम कर पाते इससे पहले ही उन्हें नोबेल दे दिया गया। म्यांमार, क्यूबा, वियतनाम, वेनेजुएला, ईरान और रूस जैसे देशों को वो अपने दोस्ताना रवैये का नजराना पहले ही पहुंचा चुके हैं, तो फिर अब क्या ओबामा सिर्फ इतिहास में अमर होने के लिए हिरोशिमा गए थे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूर्वी एशिया अध्ययन विभाग की प्रोफेसर प्रीति नलवा,
कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट ओबामा आए हिरोशिमा में, उनका ये कदम ही एक बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, हिस्ट्री के लिए भी और जापान के लोगों के लिए भी। बाकी जो हिबाकुशा के हैं वहाँ पे जिन लोगों के साथ प्रेसिडेंट ओबामा ने 2-3 मिनट बात की है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए। मेरे ख्याल में कुछ हद तक उनके हृदयों को और उनके सोल को जरूर ये जस्टर टच किया है, मगर ऐसे भी और लोग जो चाहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन से बिल्कुल ना हो, और ओबामा ने बिल्कुल न्यूक्लियर वेपन्स के लिए कुछ खास किया नहीं है इनको इरेडिकेट करने के लिए, तो वो भी बहुत खफा हैं। तो दो ओपिनियन है जापान में भी, मगर ये कहना बहुत जरूरी है कि उनकी विजिट कुछ लोगों को हृदय को जरूर छुआ है कि वो वहाँ पर आए हैं, उन्होंने उनके हाथ पकड़ा है, उनकी कहानी सुनी है, चाहे दो मिनट के लिए चाहे तीन मिनट के लिए।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शायद इस तरह के कदमों का बहुत महत्व होता है। जापान ने पर्ल हार्बर और दक्षिण कोरिया के लिए तो माफी नहीं मांगी, लेकिन वहां के सम्राट चीन में किए अपने देश के जुल्मों को हर साल याद करते हैं। जेएनयू में पूर्वी एशिया अध्ययन केंद्र के प्रोफेसर श्रीकांत कोंडपल्ली,
जापान ने अभी तक 19 बार अपॉलोजी कर चुके हैं। उनका एम्परर जब चीन पहुंचे 92 में, वो भी अपॉलोजी दिया चीन लोगों को, और हर अगस्त 14 तारीख को उनका स्पीच में ये सारा जो एट्रोसिटीज के बारे में वो जिक्र करते हैं हर साल, और उसके बाद अगले दिन को प्रधानमंत्री उनका स्पीच में सारा मेंशन करते हैं।
ओबामा के हिरोशिमा जाने पर उनके अपने देश में भी बहुत से लोग नाराज हैं, और इनमें एक नाम डोनाल्ड ट्रंप का भी है। लेकिन जानकार कहते हैं कि लोकतंत्र में असहमतियों के साथ आगे बढ़ते जाना ही राजनीति है। विली ब्रांट का भी उस वक्त जर्मनी में खूब विरोध हुआ था, लेकिन फायदा उससे कहीं ज्यादा हुआ। राम यादव,
जर्मनी के लोग तो शुरू में इससे बहुत चकित थे, उन्हें लगा कि ये तो हमारे लिए बड़ा अपमानजनक है, हमारे चांसलर ने घुटने टेक दिए। लेकिन समय के साथ यहाँ के लोगों ने भी महसूस किया कि हमें अपने इतिहास को स्वीकार करना होगा। हमने अपने इतिहास में दूसरों पर जो अत्याचार किए हैं, उसके बिना न तो हम ईमानदारी से जी सकते हैं और न हमारा उन लोगों से कोई वास्तविकता के धरातल पर अच्छा संबंध बन सकता है जो हमसे पीड़ित रहे हैं।
ओबामा क्या चाहते थे ये बताने के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा। एक मिनट के लिए उनसे गले मिलकर अपनी बातें कहकर हिरोशिमा के पीड़ितों को शायद कुछ सुकून मिल गया हो, लेकिन हथियारों की होड़ ऐसे और पीड़ितों को जन्म नहीं देगी। दुनिया को इसका भरोसा हासिल करने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। निखिल रंजन, बीबीसी दिल्ली।
और अब वक्त है खेल समाचारों का। खेल समाचारों को लेकर रजत चान्ना स्टूडियो में आ गए हैं। जी रजत, क्या है आज खेल की खबर?
जी सबसे पहले बात क्रिकेट की करेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में होगी और इस बार भारत और पाकिस्तान के बीच टक्कर देखने को मिलेगी। इंग्लैंड में होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। टूर्नामेंट में 8 टीमें हैं जिसमें दो ग्रुप में 15 मैच होंगे। टूर्नामेंट का ओपनिंग मैच बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच 1 जून को ओवन में खेला जाएगा। इस बार वेस्टइंडीज को कम रैंकिंग की वजह से जगह नहीं मिल पाई। चैंपियंस ट्रॉफी अंतिम बार 2013 में खेली गई थी और तब भारतीय टीम ने खिताब अपने नाम किया था। अगर दोनों ग्रुप पर नजर डालें तो ग्रुप ए में है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश। वहीं ग्रुप बी में है इंडिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और पाकिस्तान। उधर भारतीय टीम के पूर्व निदेशक रवि शास्त्री ने अपने सहयोगी स्टाफ संजय बांगड़, भरत अरुण और आर श्रीधर के साथ अगले कुछ दिनों में बीसीसीआई के राष्ट्रीय कोचिंग पद के लिए दोबारा आवेदन भरने को तैयारी कर ली है। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि शास्त्री बल्लेबाजी कोच बांगड़, गेंदबाजी कोच अरुण और क्षेत्र रक्षण कोच आर श्रीधर के साथ अपना आवेदन भेजेंगे। वहीं श्रीलंका के तेज गेंदबाज नुवान कुलसखेरा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अनुसार नुवान ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बना लिया है। नुवान अप्रैल 2005 में टेस्ट डेब्यू किया था और 11 साल के अपने करियर में सिर्फ 21 टेस्ट में कुलसखेरा ने 48 विकेट प्राप्त किए हैं।
जी रजत, बहुत बहुत शुक्रिया खेल समाचारों के लिए। और कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। स्विट्जरलैंड में एल्प्स पर्वतों के नीचे दुनिया की सबसे लंबी और गहरी सुरंग का उद्घाटन किया गया है। 57 किलोमीटर लंबी इस सुरंग को दिसंबर में पूरी तरह खोल दिया जाएगा। सीरिया के दारया शहर में 2012 नवंबर के बाद पहली बार आज मानवीय सहायता पहुंचाई गई है। मानवीय सहायता संस्था रेड क्रॉस ने ये जानकारी दी है। इस्लाम में तीन तलाक की प्रथा को बंद करने के लिए एक अपील पर भारत के कई इलाकों से 50,000 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों ने दस्तखत किए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग से इस प्रथा को बंद करने की अपील के लिए ये ज्ञापन सौंपा गया है। भूमध्य सागर में पिछले महीने हादसे का शिकार हुए इजिप्ट एयर के विमान के फ्लाइट रिकॉर्डर से कुछ सिग्नल मिले हैं। मिस्र के अधिकारियों और फ्रांस के जांचकर्ताओं ने इसकी पुष्टि की है। मिस्र के अधिकारियों ने कहा है कि फ्रांस के एक जहाज को ये सिग्नल समुद्र के तल से मिले हैं। बीबीसी समाचार।
इसके साथ ही दिनभर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद घटना चक्र में होगी। आज कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया तिलक राज भाटिया ने। तो अब अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति और दुनिया भर की खबरों के लिए नजर रखिए bbchindi.com पर। नमस्कार।